नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंध पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राष्ट्र आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आशा व्यक्त की है कि राज्य के युवा आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नेतृत्व करेंगे। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी, इसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता के संकेत दिए। और लियोनार्डो डिप्रिको की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनादर ने गोल्डन ग्लोब में 5 पुरस्कार और एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स ने 2 पुरस्कार जीते। हेमेंट ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और यह 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। गुजरात के गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने 2000 से अधिक जर्मनी कंपनियां लंबे समय से कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं। श्री मोदी ने रक्षा व्यापार से संबंधित प्रतिक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जर्मनी के चांसलर मर्स का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी मानवता के लिए भारत जर्मनी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है।
हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है।
आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। यह दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद एक शाश्वत, दूरदर्शी और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं में आंतरिक शक्ति, आत्म अनुशासन और निस्वार्थ सेवा को सार्थक जीवन के स्तंभ बताया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद भारत की युवा शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि राष्ट्रीय युवा दिवस सभी देशवासियों, विशेषकर युवा साथियों के लिए नई शक्ति और नया आत्मविश्वास लेकर आए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लक्ष्य प्राप्त होने तक नहीं रुकने का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं में देशभक्ति और कर्तव्य की भावना को जगा रहे हैं और विकसित भारत के निर्माण में प्रगति दे रहे हैं। इधर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आशा है कि आत्मविश्वास, अनुशासन और सेवा का उनका शाश्वत संदेश युवा मन को चरित्र, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को सरकार को कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करके एक रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर युवा ऊर्जा को सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों की ओर निर्देशित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के युवा प्रतिनिधियों सहित देश विदेश के करीब 3000 युवाओं से बातचीत भी करेंगे। चुने गए प्रतिभागी प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए निबंध संग्रहण जारी करेंगे। एक रिपोर्ट।
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए प्रधानमंत्री के उस आह्वान के अनुरूप है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में शामिल होने वाले युवा नेताओं को एक कठिन और योग्यता आधारित 3 चरणों वाली चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। इस डायलॉग का दूसरा संस्करण इसके पहले संस्करण की सफलता से प्रेरित है और इसमें डिजाइन फॉर भारत और टेक फॉर विकसित भारत, हैक फॉर ए सोशल कॉज की शुरुआत, विस्तारित विषयगत जुड़ाव और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जैसे कुछ नए अहम बदलाव किए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उपयोग असमानताओं को कम करने, हाशिए पर खड़े समुदाय को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि विकास देश के कोने कोने तक पहुंचे। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि शिक्षा न केवल चरित्र निर्माण करती है बल्कि मन को मजबूत बनाकर बुद्धि को मजबूत करती है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय भाषाओं में नए अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए JNU की सराहना की। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह प्रक्षेपित किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 और 14 अन्य वाणिज्यिक उपग्रह ले जा रहे PSLV-C62 रॉकेट मिशन के 64वें प्रक्षेपण में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने बताया है कि PSLV ने प्रक्षेपण के 4 चरण हैं, जिनमें से 2 चरण और 2 तरंग हैं। उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण के अंतर्गत ये यान का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप ही था।
तीसरे चरण के अंत के करीब हमें यान में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और यान के मार्ग में भटकाव हुआ, जिस कारण मिशन अपेक्षित मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सका। फिलहाल यही जानकारी उपलब्ध है, हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको सूचित करेंगे।
83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में लियोनार्डो डिप्रिको की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनादर ने सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्म श्रेणी सहित 5 पुरस्कार जीते हैं। सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार टियाना टेलर और श्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन ने अपने नाम किया। क्लोए झाओ के शेक्सपियर नाटक हैमनेट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन्स हंटर ने 2 पुरस्कार जीते हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन आज 16वें दिन भी जारी है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार इन प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या 544 हो गई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने कार्यवाही तेज कर दी है। 8 जनवरी से लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद है, जिससे संचार व्यवस्था ठप हो गई है। ईरानी अधिकारियों ने इस अशांति के लिए विदेशी हस्तक्षेप, विशेष रूप से अमेरिका और इसराइल को दोषी ठहराया है। राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने आर्थिक सुधारों का वादा करते हुए बाहरी शक्तियों पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी और आतंकवादी करार दिया है और कार्रवाई से पीछे हटने की भावना से इनकार कर दिया है। ईरान में 2022-23 के विरोध प्रदर्शनों के बाद से देश में अशांति का ये सबसे गंभीर दौर है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर ने कहा है कि भारत और अमेरिकी व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि व्यापार पर अगली बातचीत कल होगी। नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा है कि व्यापार दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कल हैदराबाद में गतिशील लक्ष्य और उच्च स्तरीय आक्रमण क्षमता वाली मानव पोर्टेबल टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए DRDO और उसके साझेदारों को उद्योग जगत की सराहना की। केंद्र अन्वेषण ब्यूरो तमिलनाडु के करूर में भगदर हादसे की जांच के लिए सिलसिले में तमिलगा वेद्री कडगम पार्टी के मुख्य प्रमुख और फिल्म अभिनेता विजय से आज नई दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। हादसे में 41 लोग मारे गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्स के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंध पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राष्ट्र आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आशा व्यक्त की है कि राज्य के युवा आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नेतृत्व करेंगे। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन सोलहवें दिन भी जारी, इसमें सैकड़ों लोगों की मारे जाने की खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता के संकेत दिए। और लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने गोल्डन ग्लोब में 5 पुरस्कार और एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमोन हंटर ने 2 पुरस्कार जीते। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।